हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 358। इस पर सुनैना ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, जब देखो तब कहीं ना कहीं गायब हो जाते हो, वो भी बिना बताए। अच्छा ठीक है, कब कहीं भी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। आदित्य ने उसके हाथ पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहा। तो सुनैना ने इस बार कुछ भी नहीं बोला और जवाब में बस वो हल्का सा मुस्कुरा दी, और फिर उसने आदित्य के कंधे पर अपना सिर झुका लिया। उसके सिर पर अभी भी बैंडेज बंधा हुआ है, तो आदित्य को लगा कि इस तरह से उसके कंधे पर सिर टिकाने से कहीं सुनैना को चोट न लग जाए, इसलिए उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसे खुद से दूर किया और फिर एकदम धीरे से उसे वापस बेड की सॉफ्ट पिलो पर लिटा दिया और कहा, रेस्ट करो तुम, और अब तो कल ही छुट्टी मिलेगी यहाँ हॉस्पिटल से। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, इसका मतलब एक दिन और झेलना होगा मुझे, ये वाइट पर्दे, दीवारें और ये सब इस सड़े हुए हॉस्पिटल रूम को। उसकी बात पर आदित्य ने हैरानी से कहा, अरे यार, इतना बड़ा और वीआईपी लक्जरी रूम है तुम्हारा, और तुम हो कि इसे सड़ा हुआ बोल रही हो। जितना भी वीआईपी लक्जरी और जो कुछ भी आराम हो, लेकिन मुझे तो बस अपना घर और अपना रूम ही अच्छा लगता है, वहां जहां सिर्फ हम दोनों होते हैं और कोई नहीं। सुनैना ने आदित्य का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तो आदित्य ना चाहते हुए भी उसके सिरहाने आकर बैठ गया और फिर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। सुनैना पहले ही दवाई के हाई डोजेज में थी, इसलिए वहां बेड पर लेटने के कुछ देर के बाद ही उसे नींद आ गई। उसे सोते देख आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और उसने फिर से झुककर उसके माथे पर किस किया, और वहीं सुनैना के हॉस्पिटल बेड पर थोड़ी सी बची हुई जगह में ही हल्का सा करवट होकर लेट गया। दूसरी तरफ रात का वक्त, अनय और मनस्वी अभी भी उस सीक्रेट होटल रूम में हैं, और रोते रोते मनस्वी की लगभग बेहोश जैसी हालत हो गई, तो अनय ने उसे होटल रूम के बेड पर लाकर सुला दिया है और खुद वहां बेड के आगे बेचैनी से टहलता हुआ सोच रहा है कि आखिर मनस्वी ने विराज को कहां पर छुपा कर रखा होगा। और ये सोचते हुए उसे एकदम से आदित्य का ख्याल आया, तो उसने आदित्य को मैसेज किया विराज की फोटो भेजने के लिए। कुछ देर बाद ही आदित्य ने उसे वो फोटो सेंड कर दी और अनय वहां साइड में खड़ा अपने फोन में गौर से वो फोटो देखने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह है, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा और उसमें सिर्फ विराज की फोटो है, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट और खरोच के निशान हैं, उसके बाल भी बिगड़े हुए हैं और वो थोड़ा डरा सहमा हुआ भी लग रहा है। अनय इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे मनस्वी की आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं अनय, प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम बहुत मायने रखते हो मेरे लिए, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम ही हो, कैसे बताऊंगी मैं तुम्हें ये सब, नहीं नहीं बता सकती मैं, क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं होना चाहती, तुम्हें नहीं रखना चाहती अपने साथ बांधकर, जिससे तुम्हें वो ना मिले जो तुम डिजर्व करते हो। मनस्वी नींद में रोते हुए ये सब बड़बड़ा रही है और उसकी आवाज़ सुनकर अनय के हाथ से उसका मोबाइल पर छूट कर गिर गया, क्योंकि उसे लगा मनस्वी जाग गई है और उसके पीछे बैठकर ये सब बोल रही है। लेकिन फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बेड पर लेटी हुई मनस्वी की आंखें बंद हैं, और ये देखकर तो उसे समझ आ गया कि वो सब कुछ नींद में ही बोल रही है, और उसका पूरा शरीर भी जैसे कांप रहा था किसी डर की वजह से, और सोते हुए भी उसके माथे पर पसीना और चेहरे पर एकदम डरे हुए एक्सप्रेशन दिख रहे थे। मनस्वी ने नींद में उसका ही नाम लिया है, ये कन्फर्म करने के लिए अनय उसके करीब आया तो उसे फिर से अपना ही नाम सुनाई दिया। अनय, नहीं अनय, प्लीज, नो, डोंट लीव मी। वो लगातार और बार बार यही शब्द दोहराती जा रही है, और अब करीब से सुनने पर तो अनय को भी भरोसा हो गया है कि वो नींद में उसका नाम ही बड़बड़ा रही है, और उसे पता नहीं क्यों मनस्वी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो नींद में भी उसका नाम लेगी कभी भी, इसलिए और वो उसे इस तरह नहीं देख पा रहा है। ये सब सोचते हुए वो उसके करीब आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ मनस्वी, उठो, नींद से जागो, उठ जाओ तुम, जरूर कोई बुरा सपना देख रही हो, देखो मैं यहां पर ही हूं। अनय ने दो तीन बार ऐसा किया तो तीसरी बार में मनस्वी की नींद टूट गई और उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और सामने बैठे अनय की तरफ एकदम ही अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे कि उसने सामने कोई भूत देख लिया हो। उसको इस तरह अपनी तरफ देखते हुए अनय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया कि मनस्वी आखिर क्या समझने की कोशिश कर रही है उसकी तरफ देखते हुए। जबकि मनस्वी कुछ सेकंड बाद ही एकदम से उठकर बैठी और जल्दी से आगे आकर उसके गले लग गई और बोली, अनय, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे डिवोर्स नहीं दोगे ना? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते? प्लीज प्लीज रुक जाओ यहां। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो। तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो। तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो। तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। इतना सब बोलते हुए मनस्वी के हाथ अनय की पीठ और कंधों पर बहुत ही ज्यादा कस गए हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनय की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से मनस्वी का शरीर कांप रहा है और वो लगभग रुआंसी होकर ये सब कुछ बोल रही है, तो अनय तो क्या कोई भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता, क्योंकि वो इस वक्त झूठ बोलती हुई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसलिए अनय ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया और कुछ देर इस तरह से बैठे रहने दिया। फिर कुछ देर बाद अनय ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं कहीं भी नहीं जा रहा मैं मनस्वी, क्यों तुम बार बार यही बातें बोल रही हो? यही पर हूं मैं, देखो ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने। अनय की आवाज जब उसके कानों में पड़ी तब मनस्वी को ऐसा लगा जैसे उसे अब सच में होश आया और वो नींद से जागी हो, इसलिए वो उससे थोड़ा सा दूर हुई और उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, सॉरी, वो मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। अनय से सॉरी बोलते हुए वो इधर उधर देखकर अपनी नजरें चुराने लगी। मनस्वी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए अनय ने कहा, सॉरी क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या किया तुमने? वैसे जब सॉरी बोलना चाहिए था तब तो कोई सॉरी नहीं निकला तुम्हारे मुंह से, तब तो जाने क्या क्या बोल रही थी, और अब? मनस्वी एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ओके आई एम सॉरी, उस बात के लिए भी जो कुछ भी तुम्हें हर्ट किया हुआ है, और वो जो कुछ भी मैंने अभी बोला, प्लीज उसे सीरियसली मत लेना। तुम्हें भी अपनी लाइफ जीने का हक है और तुम जा सकते हो अनय, जहां भी जाना चाहो मुझे छोड़कर। वैसे भी हमारी शादी तो एक डील का हिस्सा थी ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सारी बातें बोलते हुए मनस्वी की आवाज एकदम ही ज्यादा धीमी हो गई और उसने अपना सिर भी नीचे झुका लिया है, क्योंकि ये सब कुछ बोलते हुए उसे बहुत ही तकलीफ हो रही है और उसकी आंखों में आंसू भी है, इसलिए वो अनय से नजर भी नहीं मिला पा रही है।
उसकी बात सुनकर अनय ने एकदम सीरियस टोन में सवाल किया, और कहां जाऊंगा मैं ये भी बता दो, अगर खुद से दूर करने का मन बना ही लिया है तो। लेकिन यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलो, मैं देखूं तो सही जो बात तुम्हारी जबान बोल रही है क्या वही तुम्हारी आंखें भी बोल रही हैं? मनस्वी ने इस तरह कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूं और क्या नहीं? अनय ने अब थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो चीज ठीक कर मुझे रुकने के लिए बोल रही थी तुम, और जैसे ही नींद टूटी तो बस सच्चाई सामने। अनय ने बहुत ही कड़वाहट से ये सब बोला तो उसके ऐसे तीखे शब्द मनस्वी झेल नहीं पाई और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अनय प्लीज ये सब मत बोलो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं ये सब नहीं चाहती, लेकिन मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, और बस इसीलिए। इस पर अनय ने उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, और अगर मैं कहूँ मुझे खुशियाँ नहीं वो गम चाहिए जो तुम्हारे साथ मिले तो? बैकग्राउंड म्यूजिक।
अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियाँ फिलहाल है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है? दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हों दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं।
इतना बोलते हुए वो उसकी आंखों में ही देखने लगा। उसकी ऐसी बात सुनकर मनस्वी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, अनय प्लीज ऐसी बातें मत करो और मुझे उम्मीद मत दो, मैं फिर से टूट कर भी करना नहीं चाहती, मैं फिर से वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
ये सब बोलते हुए मनस्वी की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जो लगातार अपना सिर्फ हल्के से नहीं में हिला रही है। लेकिन तभी अनय आगे बढ़कर उसके होठों पर हल्के से किस कर, शायद अपनी बात साबित करने के लिए या फिर उसे शांत करने के लिए। उसके होठों पर हल्के से चूमते हुए अनय तुरंत ही उससे दूर हो गया। लेकिन उसके ऐसा करने पर मनस्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि ये शायद दूसरी बार था जब अनय ने उसे खुद से आगे आकर किस किया है। और वो नहीं जानती कि इस वक्त अनय के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो इतना ज़रूर चाहती है कि आज वो उन दोनों में से कोई भी पीछे ना हटे और अनय उसे पूरी तरह से अपना बना ले। लेकिन मनस्वी को किस करके हटते ही अनय जैसे अपने सेंस में वापस आया। वो एक झटके से उससे दूर हुआ और वहाँ बेड से उठकर जाने लगा, तो मनस्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। और उसके हाथ पकड़ते ही अनय ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, तो मनस्वी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं अनय प्लीज़, आज नहीं, आज मुझसे दूर मत जाओ। मैंने कहा ना, नहीं रह पाऊँगी मैं तुम्हारे बिना, आई नीड यू। उसके ये बातें सुनकर अनय उसकी आंखों में ही जाकर देखने की कोशिश कर रहा है, जहां पर उसे न जाने कितने ही जज्बात उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और मनस्वी ने उसका हाथ भी कसकर पकड़ा किया है, जिससे कि वो उसे खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती। क्रमशः